राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। ॐ नमः ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपलवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सतगुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। घट घट में व्याप्त सर्वंतर जामी सर्वाधिष्ठान प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमवीत राग विरक्त शिरोमणि निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धे स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का अहोभाग्य है, कोई हमारा पुण्य उदय हुआ है जो महापुरुषों की सन्निधि मिल रही है, सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी जीव संसार में आता है वो इस संसार भवसागर से पार होने के लिए सुख की चाहना करता है, सुख चाहता है, इस भवसागर में सुख की तलाश करता है, सुख की भी ऐसी तलाश करता है कि जिस सुख का कभी अभाव ना हो, अविनाशी सुख चाहता है और दुख की अत्यंतक निवृत्ति चाहता है कि दुख कभी मेरे जीवन में ना आए, सुख बना ही रहे। लेकिन कोई भी, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बहुत देर के लिए बना रहे तो उसके लिए जो मकान को बनाए रखने के नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। शरीर हमारे को प्राप्त हुआ है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत यत्न करते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार के आसन प्राणायाम इत्यादि करते हैं कि शरीर हमारा निरोग रहे। लेकिन जो सुख है ना, सुख उसके लिए हम यत्न कौन सा करते हैं कि सुख हमारा बना रहे। सुख चाहते हैं अविनाशी, और किससे चाहते हैं? विनाशी पदार्थों से। किसी विषय का, विषय भोग का अनुभव करना ही तो सुख है। किसी विषय का भोग जो करते हैं ना, उस भोग का अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करना ही भोग है। जैसे हम दूसरे विषयों का उपभोग करते हैं तो उससे क्या होता है? जो विषय हमारे अनुकूल होता है अथवा जो व्यक्ति हमारे अनुकूल होता है या कोई स्थान, कोई जगह हमारे अनुकूल होती है, गर्मी में कश्मीर इत्यादि में ठंडी जगह जाते हैं तो वो हमारे अनुकूल है शरीर के, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ जाने पर हमारे को सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति वहाँ क्यों होती है गर्मी में, यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ भी जब एसी में बैठते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, बाहर आते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। तो सुख दुख का कारण क्या है ये कभी हम चिंतन नहीं करते। कश्मीर इत्यादि ठंडे स्थानों पे जाते हैं तब भी सुख की अनुभूति होती है, यहाँ एसी में बैठ जाते हैं तब भी होती है, तो फिर वहाँ का और यहाँ का अंतर क्या हुआ? जितनी वहाँ सुख लगता है ठंडी, उतना ही यहाँ लगता है एसी में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार गर्मी जब वहाँ लगती है तो वहाँ भी दुख होता है, गर्मी यहाँ लगती है तो यहाँ भी दुख होता है। तो सुख दुख का कारण क्या है? चिंतन तो इस बात का है, सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख का कारण नहीं ढूंढते। जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं उसका कारण तो हम अपना रहे हैं, जैसा कारण अपनाते उतना ही सुख मिलता है। जो एसी लगवा लेता है घर में उसको गर्मी में परेशानी नहीं होती, उसको लगता है कि अब मैं सुखी हूँ, लेकिन कब तक? जब तक एसी में है, जब बाहर निकलता है तो फिर दुखी होता है। तो फिर सुख जो अविनाशी है वो कहाँ से मिलेगा? ये तो क्षणिक सुख है, और क्षणिक सुख का कारण हमारे पास मौजूद है, और दुख का कारण जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, कोई व्यक्ति हो, जहाँ स्थान हो, जहाँ हमारी स्थिति हो, कोई भी हो, जो हमारे प्रतिकूल है उसी से हमारे को दुख होता है। तो अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान ही दुख का कारण है कि नहीं? सुख दुख का कारण क्या है? अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, और अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का कारण क्या है? राग और द्वेष। जहाँ राग है हमारा वहाँ हमारा अनुकूलता है, जहाँ हमारा द्वेष है वहाँ प्रतिकूल है हमारे। तो इसलिए सुख दुख का जो कारण है वह ज्ञान है, कौन सा? अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। विरोधी ज्ञान जो प्रतिकूल ज्ञान है उससे दुख होता है। ज्ञान ही होता हमारे को, कोई चीज प्राप्त थोड़ा है दुखी करने की। मानो कोई जिससे आपका द्वेष है वो आपके सामने नहीं है, वो तो अपने घर में बैठा है या कहीं विदेश में बैठा है, लेकिन आप जहाँ दुखी हो रहे हैं तो दुख का कारण कौन हुआ? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो तो आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप दुखी हैं। तो कारण क्या हुआ? दुख का कारण फिर जो आपको प्रतिकूल ज्ञान है वही दुख का कारण है, वो व्यक्ति वो स्थान कहीं भी हो, जिससे आपका द्वेष है उसका स्मरण करते ही आप दुखी होते हैं। जिससे राग है वो भले कहीं भी हो, जिससे आपका मोह है वो कहीं विदेश में बैठा हो, पति यहाँ है पत्नी विदेश में है, लेकिन राग है कि नहीं, तो राग है तो सिमरण करते ही सुखी होती है यहाँ भी, वो वहाँ होता है। तो सुख दुख का कारण क्या हुआ? अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। हम अपने ज्ञान का अनादर करते हैं कि नहीं? जो हमारे स्वरूप का ज्ञान है उसका हम अनादर करते हैं, आदर नहीं करते। यदि आदर करते हों तो हमारे को सुख होता है, क्यों? हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है। वो कभी भी किसी से, किसी को ना उससे द्वेष है ना राग है। अपने आप से कभी कोई राग द्वेष करता है क्या? कभी हम करते हैं अपने आप से द्वेष? कभी भी नहीं करते। कई बार आप कहेंगे कि नहीं द्वेष तो होता है, अपने आप से भी होता है। होता है किसी को अपने आप से द्वेष होता है या राग होता है? होता है, ये भी कभी चिंतन नहीं किया। अपने आप से भी होता है। जब कोई आदमी जहर खाता है या फांसी लेता है तो कैसे लिया उसने? जब द्वेष हुआ तभी तो लिया, नहीं तो कभी भी ना लेता। जब फांसी लेकर के मरता है, जब जहर खा के कोई मरता है तो कारण क्या हुआ? उसको द्वेष हुआ। किससे द्वेष हुआ? समझने की बात है कि अपने स्वरूप से द्वेष हुई नहीं, अपने स्वरूप से द्वेष नहीं हुई उसको। द्वेष कहाँ, किससे? शरीर से या मन से? मन दुखी है ना, मन का धर्म है ना दुख का अनुभव करना। मन के अंदर दुख की वृत्ति, मन की वृत्ति दुखाकार हो गई तो द्वेष किससे हुई? मन से। मन का ही धर्म है द्वेष, मन का ही धर्म है दुख, मन का ही धर्म है सुख, हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो उसके साक्षी हैं। हमारे को तुरंत पता चल जाता है कि आज मन में कुछ गड़बड़ है, लगता है कि नहीं? दूसरे की गड़बड़ को हम जानते हैं, अपनी गड़बड़ को नहीं जानते, सब जानते हैं। तुरंत पता चल जाता है कि अब मेरे मन में क्या चल रहा है। हम अपने स्वयं ही साक्षी हैं, गवाह अपने हैं। तो मन के अंदर विक्षेप हुआ, क्यों? प्रतिकूल ज्ञान के कारण। किसी ने कोई बात कही आपको प्रतिकूल, जो आपके अनुकूल नहीं है, तो उससे क्या हुआ? कष्ट हुआ। किसको? मन को। तो जो बात बोली है किसी ने, जो शब्द बोला है किसी ने, वो शब्द कान के द्वारा अंदर गया, आपके कान से आवाज़ आपके अंदर पड़ी। बोलने वाला कहीं है? बोलने वाला तो बोल के चला गया, वो नहीं है आपके सामने। लेकिन उसके जाने के पश्चात भी आप कितने दुखी हैं। अब वो भले पूरी ज़िंदगी आपके पास ना रहे, लेकिन उसके शब्द नहीं आपको भूलते कभी। बाहर वाला दुखी नहीं कर रहा, अंदर वाला दुखी कर रहा है, क्योंकि वो शब्द उसके कहाँ है? आपके अंदर संस्कार बैठ गए, शब्द तो नष्ट हो जाता है। जब किसी ने शब्द बोला तो शब्द कहाँ रहता? हवा में। जब भी किसी ने शब्द बोला तो समाप्त हो गया। हम कहते हैं कि आज से 15 साल आपने पहले हमारे को ये बोला था, अब वो शब्द है कहीं? शब्द तो आकाश में रहता है, शब्द आपके अंदर कहाँ है? आपके अंदर क्या है जो आपको उसके 15 साल पहले के शब्द भी दुखी करते हैं? आपके अंदर संस्कार है, वासना बैठी है आपके अंदर, और वासना जो संस्कार हैं वह कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में। अंतःकरण में रहते हैं कि नहीं संस्कार? तो अंतःकरण में जो संस्कार हैं वो हमारे को अनुकूल प्रतिकूल स्थिति हमारी बनाते हैं। जो अच्छे संस्कार हैं उससे हमारी वृत्ति सुखाकार होती है, जो बुरे संस्कार हैं उससे हमारी वृत्ति दुखाकार होती है, जो दुख के संस्कार हैं। तो मतलब क्या हुआ, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान ही हमारे सुख दुख का कारण है। सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता, कोई भी आपको सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई भी बाहर का कोई नहीं है, ना कोई व्यक्ति ना स्थान, कोई भी नहीं है सुख दुख देने वाला, बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं कि बाहर के फलाने आदमी ने हमारे को दुख दिया है, फलाने आदमी ने हमारे को सुख दिया है। जब वो आदमी जिससे आप आज आप सुखी हैं, आज एक आदमी से आप सुखी हैं, आज अपने पुत्र से आप सुखी हैं, और दो चार साल के बाद उसी पुत्र से दुखी क्यों हैं? पुत्र तो वही है। यदि वो सुख का कारण है तो दुख का कारण क्यों हो गया? एक में एक ही बात रहनी चाहिए ना, या तो पुत्र से आपको सुख ही मिले या दुख ही मिले। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं संसार में। जब बच्चा पैदा होता है ना, कोई भी हो, तो उससे सुख मिलता है कि नहीं आपको? तो जब वो बड़ा होता है तो फिर जैसी वृत्ति होती है, अच्छे काम करता है तो आप सुखी होते हैं, बुरे काम करता है तो आप दुखी होते हैं। तो सुख दुख का कारण क्या हुआ? पुत्र आपके सुख का कारण आप मान रहे हैं, वही आपके दुख का कारण मान रहे हैं। तो विषय में सुख है या विषय में दुख है? विषय में ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। विषय में कुछ भी नहीं है, ना सुख है ना दुख है, वो तो आपके अंदर है। जो आपका संकल्प है वो आपको सुखी दुखी करता है, बाहर वाला नहीं करता। बाहर वाला तो जैसा है वैसा ही है। आप अपनी वासना से सुखी दुखी होते हैं, संस्कार से सुखी दुखी होते हैं, भले वो इस जन्म के हों भले किसी जन्म के हों। रात्रि को जो स्वप्न में होता है आपके साथ, रात्रि को स्वप्न में आपसे किसी ने बहुत झगड़ा किया, बहुत गाली निकाली आपको, लेकिन जागने के बाद कभी आपको दुखी होते हैं आप उसके झगड़े से? कभी भी नहीं होते। यदि स्वप्न में आपका बहुत किसी ने सम्मान किया तो आप जागने के बाद प्रसन्न होते हैं उस आदमी से? कभी भी नहीं होते, क्योंकि मानते ही नहीं उसको आप। लेकिन जागृत वाले को क्यों मानते हैं? जागृत वाले को क्यों मानते हैं? जब स्वप्न वाले को नहीं मानते तो जागृत वाले को क्यों मानते हैं? जब ग्रंथकार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जैसा सपना रैण का तैसा संसार, जिस प्रकार रात्रि का स्वप्न है यानी रात्रि वाले स्वप्न का जैसा संसार है वैसा ये संसार है। तो रात्रि में स्वप्न में आपको भूख लगती है तो राज के रोटी खाते हैं, लेकिन जागृत में फिर भूखे। जब वो रोटी जो खाई आपने, भोजन यदि सत्य होता तो जागृत में आपको भूख ना लगती। और जागृत में आप खा करके सोए हैं लेकिन आधे घंटे के बाद आपको स्वप्न आया तो फिर आप भूखे। तो यदि जागृत का भोजन सत्य होता तो आपको स्वप्न में भूख क्यों लगती? तो बात तो एक जैसी हुई ना, स्वप्न का भोजन जागृत में काम नहीं कर रहा और जागृत का भोजन स्वप्न में। आप क्या है, स्वप्न एक नरपतेक सिंहासन सोया, स्वप्न भया भिखारी। क्या हुआ राजे जनक के साथ? वो तो बैठा था सिंहासन पर, भोजन खा करके बैठा था, भोजन से तृप्त होकर के अपने सिंहासन पर ही था, कहीं गया नहीं है। वहां पर बैठे ही उसको स्वप्न आया तो क्या हुआ, भीख मांग रहा है। तो उसका सिंहासन, उसका राज्य का जो सामग्री थी वो क्यों नहीं काम की? स्वप्न में काम करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ सब मिथ्या हैं, झूठे, कोई भी नहीं काम करते। लेकिन हम स्वप्न वाले को तो झूठा मान लेते हैं, जागृत वाले को नहीं मानते। क्यों? जो स्वप्न वाले पदार्थ है ना, वो हमारे इन इंद्रियों का विषय नहीं है, वो साक्षी भाष्य है, उसको हम स्वयं प्रकाश, उसके स्वयं प्रकाश हैं हम। वो केवल हमारे मन का संकल्प है, हमारा मन ही सब कुछ बना हुआ है। आप स्वप्न में गंगा स्नान करने जाते हैं अपने साथियों के साथ, तो गंगा में घुस जाते हैं आप स्वप्न में, गंगा में घुस के आप स्नान कर रहे हैं और बाहर खड़े देख भी रहे हैं कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ। कौन देख रहा है? आप ही देखते हैं ना कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ। और गंगा में स्नान करते करते एक आपका साथी डूब गया, तो आपने बाहर खड़े उसको देखा कि एक मेरा साथी डूब गया, और आप उस साथी को गंगा में घुसे हुए निकाल भी रहे हैं पानी से, तो दो कहाँ से आ गए? एक अंदर स्नान कर रहा है, एक बाहर खड़ा देख रहा है। आप तो एक हैं, वहाँ दो कैसे हो गए? तो जो बाहर खड़ा है और अंदर स्नान करता है उसको तीसरा कौन देखता है? बाहर खड़े को और अंदर स्नान करने वाले को कौन देखता है? आपके कपड़े बाहर पड़े हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन किससे देखते हैं आप? आप तो सोए पड़े हैं, आंखें आपकी बंद हैं, वो जो वहाँ का दृश्य है वो किसने देखा? इस शरीर से, इन आंखों से तो हम देख सकते हैं ना वस्तुओं को, वहाँ पर तो आंखें नहीं हैं, वहाँ तो हम सोए पड़े हैं, लेकिन दृश्य पूरा देख रहे हैं, नहाते हुए और बाहर खड़े हुए सबको देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्थूल शरीर नहीं हैं, ये वाला शरीर हम नहीं हैं। यदि हम शरीर होते तो वहाँ कुछ भी ना देख पाते, लेकिन देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ हमारा मन ही सब कुछ बना हुआ है, वहाँ मन से ही सब कुछ हो रहा है। और जब आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं, गाढ़ सुषुप्ति में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वहाँ तो मन भी नहीं है, वहाँ मन कहाँ है? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप जागृत के बाद बताते हैं कि नहीं, वहाँ जो आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं वहाँ क्यों नहीं बताते कि मैं बड़ा सुखी हूँ? वहाँ पर बताना चाहिए ना, जब आप गाढ़ निद्रा में होते हैं वहाँ नहीं बता सकते, वहाँ मन भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है। कारण शरीर तो है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर नहीं है, केवल अज्ञान है कारण शरीर। वहाँ का सुख आप कब बताएंगे? जब आप जागृत में आएंगे। लेकिन आप जब स्थूल शरीर है तब भी आप प्रकाशक हैं, सूक्ष्म है, स्वप्न के प्रकाशक भी आप हैं और सुषुप्ति के प्रकाशक भी आप हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम इनके प्रकाशक हैं। जब जागृत अवस्था है अब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न अवस्था होगी उस समय जागृत और सुषुप्ति नहीं है, तो जब सुषुप्ति होगी उस समय ना जागृत है ना स्वप्न है। अवस्थाएं बदलती रहती है, एक है तो दूसरी नहीं है, लेकिन हम बराबर हैं सबके साथ, हमारे में कोई बदलाव नहीं है। तो हमारे स्वरूप का कोई अंतर नहीं है, जो कुछ है ये व्यवहार का अंतर है, उपाधि का अंतर है। इसी प्रकार शरीर के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो फिर सुख और दुख किसका धर्म है? मन का। तो हम अपने को सुखी और दुखी क्यों मानते हैं? जब हम मन ही नहीं है तो फिर सुखी दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जो सुषुप्ति अवस्था है वहाँ का सुख, वहाँ तो सुख था ना, लेकिन वहाँ का सुख मन वहाँ नहीं था, फिर भी सुख था वहाँ। यहाँ पर हम कहते हैं मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मन का धर्म है प्रसन्नता, दुखी होना सुखी होना मन का धर्म है। लेकिन हमारी अटैचमेंट मन के साथ इतनी है, इतने जन्मों की है कि हम अपने को अलग कर ही नहीं पाते, मन को ही अपना आप मानते, इसलिए कहते हैं कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, जानते हुए भी ऐसा कहते हैं। सामान्य रूप से तो हम जानते हैं, विशेष रूप से नहीं जानते। मुक्ति मतलब क्या है? सामान्य ज्ञान तो हमारे को है, विशेष रूप से अज्ञान है, यही अध्यास है, यही भ्रांति है। अध्यास और भ्रांति किसको बोलते हैं? कब होती है भ्रांति? जब किसी वस्तु का हमारे को सामान्य ज्ञान होता है, विशेष अज्ञान होता है। जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है अंधेरे में, सामान्य रूप से तो हम जानते हैं कि ये कुछ पड़ा है, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते कि ये रस्सी है, इसलिए सर्प वहाँ पर सर्प से डरते हैं कि नहीं। सामान्य रूप से हमारे को ज्ञान है कि ये कुछ पड़ा है, लेकिन विशेष रूप से नहीं कि ये रस्सी है कि सर्प है क्या है, इसलिए सर्प का भ्रम हो जाता है। तो सामान्य रूप से तो हम जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते। ये तो हमारे को अध्यास नहीं होता कि मैं मन हूँ, ये नहीं होता, लेकिन यह अध्यास हो जाता है जो मन के धर्म है ना, सुख दुख पना, ये हमारे को होता है। सुखी दुखी हम मानते हैं अपने आप को, मन नहीं मानते, क्योंकि ऐसा हमारे को ज्ञान है कि मेरा मन है। मन को अपने से अलग मान के ही बोलते हैं ना कि मेरा मन है, इसका मतलब मैं अलग हूँ। लेकिन मन के धर्मों को अपने में मानते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो इसलिए चर्चा जो हम करते हैं, जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, उसका श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करेंगे, तब हम समझ सकते हैं कि हम सत्संग करके हमारे को हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लाभ होता है कि नहीं। कहीं जैसे वहाँ पर बैठना, गप्पे लगानी वहाँ व्यर्थ होता है, यहाँ भी व्यर्थ तो नहीं होता। यदि यहाँ से उठ कर के वैसा ही रहता है तो फिर मानिए आपकी हमने श्रवण अवश्य किया लेकिन मनन नहीं हो रहा। यदि जहाँ से उठे और बाहर जा कर के वैसे ही दुखी हैं जैसे 6 महीने पहले थे, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यर्थ हो रहा है सुनना, व्यर्थ होना नहीं चाहिए यदि श्रवण किया हो तो, फिर हमारे को शांति अवश्य मिलनी चाहिए। तो कबीर जी महाराज जी की पावन वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं। कबीर जी महाराज गौड़ी राग में कहते हैं, गौड़ी कबीर जी, ओए जो दिसह अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर का सो लागा, बुझे बुझनहार सभागा। रहाओ सूरज चंद करहे उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। ये पावन शब्द है कबीर जी महाराज जी का। एक कोई कबीर जी के पास पंडित आ गया, विद्वान, लेकिन वो कैसा था? नास्तिक ख्याल था उसका, नास्तिक। विद्वान तो था लेकिन नास्तिक था, यानी वितंडा वाला था, झगड़ा करने वाला। तो कबीर जी महाराज के साथ चर्चा कर रहा है, वो कहता कोई परमात्मा वात्मा ईश्वर ईश्वर कोई नहीं है, ऐसे ही आप कहते रहते हैं कि भक्ति से परमात्मा को पा लेंगे। किसकी भक्ति करते हो? ये जो संसार आप कहते हैं कि परमात्मा से प्रकाशित है, इसका अधिष्ठान कोई ब्रह्म है? कहते कोई नहीं है, ये संसार तो आप ही बना है, किसी ने नहीं बनाया इसको। वो कहने लगा कि ये तो स्वभाव से ही बना है, किसी ने बनाया नहीं इसको। ऐसा मत भी है शास्त्र में, ऐसे मत हैं, कोई कहता है काल ने बनाया है, कोई कहता है स्वभाव से बना है, कोई कहता है 4 तत्वों का ही सारा संसार है, कोई 2 का ही मानता है, अलग अलग मत है ना। तो वो कहता है कि संसार को किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है। एक दृष्टांत दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, दृष्टांत दिया कि ऐसे लोग कहते हैं अन अनते होत ज्यों घास घासते हुए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मत वाले लोग पता क्या कहते हैं, अन अनते होए। वो कहते हैं अन से अन पैदा होता है, कौन बनाता है? आपने गेहूं या कोई जो भी आप कोई बीज बीजते हैं उससे वैसा ही अन्न पैदा होता है, उसको किसने बनाया? और घास आप लगा देते तो घास से और घास हो जाता है। अन अनते होते जो घास घासते हुए, और तैसे मनुष्य मनुष्य थे अवर्णा करता कोई, वो कहता है मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, और कौन सा करता है बताइए। माता पिता से बच्चा पैदा हुआ, बच्चे से फिर बच्चा बड़ा हो गया, उससे फिर बच्चा पैदा, मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है, जैसे घास से घास, अन्न से अन्न। तो कहते हैं कौन सा परमात्मा करता कौन सा, जब कोई दिखता तो है नहीं, जो दिख रहे हैं वहाँ करता, वहाँ परमात्मा कौन सा है। फिर वो कहते हैं कि जैसे वृक्ष बीजते जामे, जैसे जो वृक्ष है वो बीज से होता है, बीज वृक्षते हुए अभिरामे, फिर वो जब वृक्ष होता है तो उसको बीज लगते हैं। तो कहते हैं यहाँ परमात्मा कहाँ से आ गया। उसने कहा, नास्तिक था ना वो, विद्वान तो था लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। वो कहता था सब कुछ स्वभाव से होता है, जैसे मीमांसा शास्त्र वाले हैं वो अनीश्वरवादी हैं, वो कहते हैं कर्म से ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं करता, कर्म ही सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार जब कबीर जी को उसने कहा, इस प्रकार बैठे बैठे चर्चा कर रहा था तो संध्या का समय हो गया। कबीर जी महाराज बैठे, ऐसे ऊपर को ख्याल गया कबीर जी का, तो उस समय तारे जो ना निकल गए थे, तारे चमक रहे थे। तो कबीर जी ने उस पंडित को इस प्रकार उस विद्वान को बोला कि ठीक है आपकी बात, जो आप कहते हैं उसको हम कुछ नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि ये जो आकाश में तारे चमक रहे हैं, जैसे दीवार में शीशे लगे होते हैं ना, छोटे छोटे शीशे दीवार में होते हैं तो चमकते हैं कि नहीं। वो कबीर जी महाराज ने कहा कि ये जो आकाश में तारे चमक रहे हैं, वो ये जो दिशे हैं अंबर तारे, अंबर का अर्थ आकाश है, अथवा अंबर का अर्थ है ऊपर के लोग, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, ऊपर के लोग, या अंबर का अर्थ है आकाश। तो कबीर जी महाराज कहते कि ये जो तारे आपको नज़र आ रहे हैं, किन ओए चीते, यदि ये सब स्वभाव से ही बने हैं तो बताइए ये जो तारे हैं ऊपर चमक रहे, इनको बनाने वाला कौन है, किसने बनाए हैं ये, किसने बनाए हैं। वो कहता अपने आप बने हैं। वो कहता ये नो किसने बनाना है, अपने आप बने हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि अपने आप बने हैं मान लेते हैं, ये खड़े किसके आश्रय हैं, यदि अपने आप बने हैं और ये किसके आश्रित हैं। तो कहता आकाश के आश्रित। तो कबीर जी कहते आकाश को किसने बनाया, तारे तो ठीक है आकाश में हैं लेकिन आकाश किसके आश्रय है, आकाश को किसने बनाया। तो कहता उस आकाश को भी किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप बना है। तो कहते हैं वो आकाश किसके आश्रित खड़ा है। तो वो कहने लगा उस दूसरा कोई आकाश है उसमें खड़ा है, या कहने लगा कि आकाश किसी के आश्रय नहीं खड़ा, अपने आप में खड़ा है, अपने आश्रय खड़ा है। तो कबीर जी महाराज कहते कि तुम अपने आश्रय खड़े हो सकते हो, तुम यहाँ बैठे हो किसके आश्रित बैठे हो, किस पे बैठे हो। कहते धरती पर बैठे हैं। कहते अपने आप में बैठो ना, धरती में क्यों बैठे हो, आप भी अपने आप पैदा हुए हैं ना, तो अपने आप में बैठो, धरती में क्यों बैठे हो। आकाश जब अपने आप खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप हवा में खड़े हो जाओ, कहते हैं पृथ्वी पे क्यों खड़े होते हो। फिर कहते कबीर जी महाराज कि आकाश, वो कहता आकाश को कोई दूसरा आकाश मान लेते हैं कि दूसरे आकाश के आश्रित खड़ा है। तो कबीर जी कहते दूसरा आकाश किसके आश्रित खड़ा है, कहाँ तक जाओगे, कोई ना कोई तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, तारे आकाश में है, आकाश किस में है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कहते खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा मानते जाओगे तो अनवस्था हो जाएगी, रोक ही नहीं पाओगे, कहाँ तक जाओगे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आश्रित नहीं होती, किसी ना कोई उसका आश्रय, उसका बनाने वाला कोई मानना पड़ता है। संसार में जब मकान बनाया है आपने تو مکان کو دیکھ کر کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا مکان یا اچھی گاڑی یا اچھا کوئی فرنیچر بنایا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھ کے؟ کہتے ہیں بنانے والے کی کمال ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ فرنیچر کی کمال نہیں کہتے، فرنیچر تو بہت اچھا ہے لیکن کہتے ہیں کمال تو بنانے والے کی ہے، تو آپ نے کہتے اس کو دیکھ کر کے کارن کا انمان لگایا کہ نہیں مکان کو دیکھ کر کے آپ بنانے والے کی کمال ہے؟ مکان یدی اپنے آپ بنا ہے تو یہ کیوں بولتے ہیں پھر جب آپ کہتے ہیں سنسار اپنے آپ بنا ہے؟ اس لیے کبیر جی مہاراج نے کہا کہ ایسا نہیں ہے پنڈت جی، یہ جو اوپر آپ کو دکھائی پڑتے ہیں نا تارے، کن اوئے چیتے، کس نے بنائے ہیں، کون ان کو چترن کرنے والا؟ کہتے یہ جیسے مورتی ہوتی ہے نا دیوار پہ لگی ہوئی، تو اسی پرکار یہ چمکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے شیشہ لگا ہے دیوار پہ، تو اس کو بنانے والا کوئی چترکار ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ جو اوپر چمک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بنانے والا چترکار ہے، جب یہ مورتی ہے تو ان کا کوئی چتیرا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ چتر کو ہی آپ دیکھ رہے ہو، چتیرا بھول گیا آپ کو، بنانے والا بھول گیا، چترکار نہیں یاد۔ ایک اور بھی وچن آتا ہے کہ آپ تاج چتر چتراک چتیرا چچا رچت چتر ہے بھاری، تاج چیت چیتو چتکاری، ایک ایسا وچن آیا ہے چچے اکشر، جو چا اکشر ہوتا ہے نا چا، اس کے دوارا ایک وچن کہتے ہیں پاون باڑی میں گرودیو مہاراج، چچا رچت چتر ہے بھاری، یہ کہتے ہیں جو سنسار کے چتروں کی رچنا ہے نا بڑی ادبھت ہے، یہ بھی تو چتر ہے نا جتنے دکھائی پڑتے ہیں، تے تاج چیتا چیتو چتکاری، لیکن ہماری درشٹی کیا ہوگی؟ ہم چتر کو سنسار کے جتنے چتر ہیں ان کو دیکھتے جا رہے ہیں، چترکار بھول گیا۔ چتر بچتر اہ ابجھیرا، اور یہ نانا پرکار کے جو چتر ہیں یہی کہتے ہیں فساد کا جھگڑے کا کارن ہے۔ کئی بار چتر سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں، مورتی سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں، جو بنائی ہوتی ہے اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، فساد ہو جاتا ہے کہ نہیں، مورتی سے ہی جھگڑا ہو جاتا ہے کئی بار چتر سے۔ اے سنسار میں جو بھی آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں سب چتر ہیں کہ نہیں؟ تو چتر سے کتنا جھگڑا ہوتا ہے، چتر بچتر اہ ابجھیرا، یہ کہتے ہیں جھگڑے کا کارن چتر ہے۔ اس لیے کیا کرو، تاج چتر ہے چتراک چتیرا، اس لیے چتر کو چھوڑ دو، آپ چتر کا دھیان مت کرو، چترکار کا دھیان کرو جس نے یہ بنائے ہیں، تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب چتر کو دیکھو گے تو جھگڑا ہو جائے گا، چترکار کا دھیان کرو آپ، تاج چتر ہے چتر کو چھوڑ دو، چترکار کا دھیان کرو۔ کہتے ہیں کبیر جی کہ اے جو دیسے امبر تارے، اوپر کو انگلی کر کے کہتے ہیں کہ اے جو اوپر چمک رہے ہیں تارے، پنڈت جی بتائیے کن اوئے چیتے، ان کو کس نے بنایا، ان کا کوئی چیتن ہارا ہے کہ نہیں، یہ جب چتر چمک رہے ہیں تو ان کا کوئی چترکار ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی تو چترکار ہے، اس نے کہا تھا اپنے آپ چمکتے ہیں، کوئی چترکار نہیں ہے، یہ جو آکاش ہے یہ بھی اپنے آسرت کھڑا ہے۔ تو کبیر جی مہاراج کہتے ہیں کہو رے پنڈت امبر کا سے لاگا، امبر یعنی آکاش، بتائیے پنڈت جی یہ آکاش کہاں سے ہے، کس کے آسرت کھڑا ہے؟ یہ کہتے ہیں ایسے نہیں پتا چلتا، جب چنتن کریں گے کہ سنسار کی کوئی وستو اپنے آپ نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں گھاس گھاس سے ہوتا ہے، ان ان سے ہوتا ہے، آدمی سے آدمی ہوتا ہے، لیکن جب خیال کریں گے تو بنا تو سکتے ہیں آپ، لیکن چلائے گا کون؟ مانو آدمی سے آدمی ہوتا ہے، منوشی سے منوشی ہوتا ہے، ایک منوشی سے دوجا جانو بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کو چلا کون رہا ہے، چیشٹا اس کی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ ماتا پتا اس کو پکڑ کے چلاتے ہیں کتنی دیر کے لیے، ساری زندگی اس کو پکڑ کے چلائیں گے کیا؟ اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں ماتا پتا، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کون چلاتا ہے؟
वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है, कैसे गाड़ी में चढ़ता है, तो कोई ना कोई है कि नहीं उसको चलाने वाला। यदि मनुष्य से ही मनुष्य हुआ है तो चलावे उसको मनुष्य को चलाना चाहिए। लेकिन यदि जो मालिक है, स्वामी है, उसकी कुदृष्टि हो जाए तो कभी भी नहीं चला सकते। हम चला सकते हैं, जोर लगाने पर भी नहीं चला सकते। एक बार जब आदमी खाट पर पड़ जाता है ना, तो किसी की हिम्मत है कि उसको चला जाए? नहीं चला सकता। यदि अपने आप सब कुछ होता ना, तो वो जो आदमी खाट पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, अपने आप उठ के भाग जाता हूँ, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ती। इसलिए कहते हैं कि हे पंडित जी, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको कुतर्क है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानं, किसको ज्ञान होता है? श्रद्धावान को होता है। तो श्रद्धा तो किसी पर होती है कि नहीं? गुरु वचन और वेद वचन, गुरु और वेद वचन, जो गुरु और वेद के वचनों में विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का लक्षण क्या है? गुरु वेद वचन जो है ना, इनके ऊपर विश्वास करना श्रद्धा है। तो जब हम किसी गुरु को मानेंगे, वेद को मानेंगे, तभी तो है, विश्वास करेंगे तभी तो श्रद्धा बनेगी। तो श्रद्धा जब होगी तभी ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं बुझे बुझनहार सभागा। हे पंडित जी, इस बात को कोई बड़े भाग्य वाला जो आदमी होता है ना, जो सौभाग्यवान है, जिसने पुण्य कर्म किए, अच्छे निष्काम कर्म किए, निष्काम उपासना की है, उसको पता चलता है कि इस संसार को चलाने वाला कोई है, ये अपने आप नहीं चलता। हाँ, इसको जो चलाने वाला है उसका कोई नहीं है कारण, वो तो सबका कारण है। तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसके प्रकाश से तिसदय चानन सब मह चानन होए, उसके प्रकाश से ये सभी प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन जो सबका प्रकाशक है उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। वो कैसा है? थाप्या ना जाए, कीता ना होए, वो कभी भी किसी से बनाया हुआ नहीं है। वो कैसा है? सैभं, स्वयं प्रकाश है कि नहीं? वो थाप्या ना जाए, कोई भी उसको बना करके कहीं स्थापन नहीं करता। कीता ना होए, किसी ने बनाया नहीं है उसको, लेकिन इसको बनाने वाला है। तो बुझे बुझनहार सभागा, उसको कोई बड़े भाग्यवान आदमी, बुद्धिमान आदमी समझता है कि इस अंबर के ऊपर जो तारे हैं ना, इनका कोई बनाने वाला है। तो फिर उसके बाद जो पंडित था ना, जब इस प्रकार कबीर जी ने कहा तो वो पंडित चुप हो गया, जो विद्वान था वो चुप हो गया। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि जो प्रभु पिता परमात्मा ब्रह्म है ना, उसको ही सबका आसरा मानो, उसी ने ये बनाए हैं, उसी के द्वारा ये प्रकाशित हैं। तो वो पंडित कहता कि कैसे, हमारे को बताइए कैसे हम समझेंगे। तो कबीर जी महाराज कहते हैं हम समझा देते हैं आपको कि ये जो संसार में नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, ये यदि अपने आप में आप ही बने होते ना, तो कभी जैसे हम लोग कोई कार्य करते करते ऊब जाते हैं कि नहीं, तो कह देते हैं जैसे आज रविवार है तो कहते हैं आज छुट्टी कर लेते हैं। तो कभी कभी सूर्य चंद्रमा भी कह देते कि बहुत देर हो गई काम करते करते, आज एकदम छुट्टी करके रेस्ट करते सो जाते हैं। यदि अपनी मर्जी से चलते होते तो उनको भी तो कभी आ जाता कि हम ही आज नहीं आएंगे, आराम करते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अपनी मर्जी से काम करने वाला तो कभी भी सो जाएगा, कभी भी बैठ जाएगा कि क्या करना है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। तो जिसको डर है कि कोई पूछने वाला है, वही सही सही काम करता है कि नहीं? तो यदि सूर्य चंद्र को मालूम है कि हमारे ऊपर भी कोई है, इसलिए बराबर चल रहे हैं कि नहीं, ये बात कबीर जी महाराज कहते हैं। सूर्य चांद करहे उजियारा, सूर्य और चंद्रमा उजियारा प्रकाश कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं कोई मालूम नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी के भय में है, किसी का इनको भय है, तभी ये चल रहे हैं। कैसे, एक और दृष्टांत है कि भय में रचियो सब संसारा, या कह आपने और भी श्रवण किया होगा कि भय में सूरज, भय में चंद, सब में चल रहे हैं कि नहीं। भय के अंदर सूरज है, चंद्रमा है, आकाश है, पृथ्वी है, इनको सबको किसी ना किसी का भय है, नहीं तो कभी ये अपनी मर्यादा को छोड़ जाते। मृत्यु है, मृत्यु मर्यादा में चल रहा है कि नहीं, नहीं तो मृत्यु जब चाहे किसी को मार दे, मृत्यु जब चाहे किसी को मार दे, लेकिन नहीं मार सकता। तो किसी ना किसी का है ना अंकुश उनके ऊपर। यदि इस संसार का कोई बनाने वाला ही नहीं है तो फिर मर्यादा कैसे चलेगी। तो मर्यादा है संसार की, इसका मतलब है कि ये सारा संसार किसी के भय में है। भय विच सूरज, भय विच चंद, ओह करोड़ी चलत न अंत। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाद, भय विच आडाणे आकाश, भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवह जावह पूर, सगलिया भौ लिखिया सिर लेख। सारे संसार के जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सबके माथे के ऊपर भय का लेख लिखा हुआ है, कोई भी भय के बाहर नहीं है। एक ही ऐसा है नानक निर्भव निरंकार सच एक। एक जो निरंकार है ना, वो ऐसा है कि वो कैसा है, निर्भव, उसको किसी का भय नहीं है, सारा संसार भय में है। तो इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि आपको कोई ना कोई ईश्वर मानना पड़ेगा। इस संसार का कोई आश्रय है जिसके प्रकाश से ये तारे नक्षत्र सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। तिसदे चानन सब मह चानन होए, सूरज चांद करहे उजियारा। यदि उसका प्रकाश इनको नहीं मिलता तो सूरज चांद प्रकाश नहीं कर सकते। ये सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को कि संसार के पदार्थों को सूरज चंद्रमा लाइट अग्नि प्रकाश कर सकती है, लेकिन जो मेरा धाम है ना उसको नहीं। ये तो आपने पढ़ा है, सुना है कि नहीं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। यहाँ पर ना सूर्य न चंद्र न अग्नि कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो संसार को तो प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन संसार का जो कारण है, जो इनका कारण है, नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे। जो सूर्यों का भी सूर्य है, जो चंद्रमाओं का भी चंद्रमा है, यानी प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, उसी की बात है। तिसदे चानन सब मह चानन होए, तस्या भाषा सर्विदं विभाति। वहां पर न सूर्य न चंद्र न अग्नि न बिजली कुछ भी नहीं जब होता। एक जगह उपनिषद में ज्योतियों का वर्णन किया है, ज्योति कितनी ज्योति है संसार में। जनक के साथ प्रश्न उत्तर चल रहा था याज्ञवल्क का, तो जनक ने पूछा कि कौन कौन ज्योति है। तो कहते हैं एक ज्योति है चंद्रमा, दूसरा ज्योति है सूर्य, और तीसरी ज्योति है अग्नि, और चौथी है बिजली। तो जब ये चारों नहीं होती, जनक कहते हैं ये सब ज्योति है महाराज, जब सूर्य नहीं होगा तो चंद्रमा होंगे, जिस दिन अमावस को कहते चंद्रमा भी नहीं होंगे उस दिन लाइट होगी, जब लाइट भी नहीं होगी तो अग्नि होगी। तो जनक जी महाराज जी ने कहा कि जब ये चारों ही ना हो तब कौन होगा। याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि जब जब चारे ज्योति ना हों तब कौन है और इनको प्रकाशित करने वाला कौन है, पंचम ज्योति कौन है, ब्रह्म है। तो तिस्ते चानन सब मह चानन होए, उसके प्रकाश से सबके अंदर प्रकाश है, उसकी सत्ता से सब काम करते हैं। भीषाद पवते वायु, यानी उसके भय से सारे चल रहे हैं। तो कबीर जी महाराज ने कहा कि चांद सूरज चांद करहे उजियारा, जे उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। ये सूर्य है, चंद्र है, जितना संसार है ना, सबके अंदर कौन है, ब्रह्म है सबके अंदर। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसलिए बोला है ना कि ब्रह्म सबके अंदर फैला हुआ है। सबके अंदर कैसे फैला हुआ है, जीव के अंदर, जीव के अंदर अंतर्यामी रूप में विराजमान है कि नहीं, हमारा शासन करता है कि नहीं, शासन कहाँ बैठ के, अंदर बैठ के करता है, तभी तो हम चल रहे हैं शासन में, नहीं तो कभी भी नहीं चल सकते। हमारा शासन करता है, यानी वो सबके अंदर विराजमान है। सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा, ये ब्रह्म का ही पसार है, जितना है ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी संसार सब अवस्तु है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परः, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये सब संसार जो दिखाई पड़ता है, यानी ब्रह्म से अलग इसकी सत्ता ही नहीं है। तो जब अलग सत्ता नहीं है तो मानो ये ब्रह्म में कल्पित है। जो कल्पित होता है ना, वो अधिष्ठान का रूप ही होता है, उससे अलग नहीं होता। जैसे रज्जू में सर्प क्या है, कल्पित है कि नहीं, तो सर्प की सत्ता रज्जू से अलग कहीं है, कहीं नहीं है। जिस समय आपको रज्जू दिखाई पड़ जाती है, सर्प नहीं दिखाई पड़ता। यदि सर्प होता तो रज्जू से अलग दिखाई पड़ता। उसी प्रकार जब किसी को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि में संसार नहीं रहता। यदि संसार सत्य होता तो ब्रह्म ज्ञान के बाद भी रहना चाहिए, रहता नहीं है। रहता का मतलब क्या, जो आकार हैं वो शिपते नहीं हैं कहीं, आकार तो बने ही रहेंगे, चित्र तो बने ही रहेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। पहले हमारे को अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते थे, अब ब्रह्म ही दिखाई पड़ते हैं। उसी को कहते हैं ना जस्मिन, जिस अवस्था में जस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मैवेव पश्यति, जस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मा वही भूत जानता, तत्र को मोह कः शोकः एकत्व मनुपस्यतः। जब तक हमारे को अनेकता दिखाई पड़ती है तभी तक कष्ट और मोह शोक होता है कि नहीं। जब अपने से अलग कोई दिखाई पड़ता है तो किसी का शोक होता है, किसी का मोह होता है। जब एकत्व दर्शन होता है तत्र को मोह को शोक, कुछ भी नहीं होता। श्रुति कह रही है कि कुछ भी नहीं होता, कब, जब सब जितने भूत हैं आत्मा ही हो जाते हैं, तब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, ना शोक होता है ना मोह होता है। तो इसका मतलब एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि नहीं, जब किसी को अनुभव होता है तो संसार नहीं, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब ज्ञात हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो द्वैतम न विद्यते, द्वैत कहीं दिखाई नहीं पड़ती, द्वैत होती ही नहीं है। तो कबीर जी महाराज समझाते हैं कि सूरज और चंद्रमा आदि जितने प्रकाश हो रहे हैं या प्रकाश कर रहे हैं, ये सब के अंदर पसरिया ब्रह्म पसारा, यानी वो ब्रह्म ही सबको प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश से जो प्रकाशित करते हैं। तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, फिर कबीर जी महाराज कहते हैं कि इस बात को समझेगा कौन। बहुत लोग यत्न करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहो कबीर जानेगा सोए, कबीर जी महाराज कहते हैं वो इस बात को जानेगा कौन, हृदय राम मुख रामय होए, जिसके मुख में भी राम है और हृदय में भी राम है, दूजा नहीं जान पाता। जब बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, तभी तो हम अपने आप को बिछड़ा हुआ मान के दुखी होते हैं कि नहीं। कब? जब राम का विस्मरण होता है। जब राम निकल जाता है ना तो फिर क्या होता है, शिव हो जाता है कि नहीं? पहले शिव था, पहले शिव होता है कि नहीं? शिव होते हैं पहले, जब निकल जाते हैं अंदर से तो क्या शिव हो जाता है, चेष्टा नहीं रहती। इसलिए जब हम किसी को लेके जाते हैं ना सीढ़ी पे डाल करके तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो जिसको लेके जा रहे हैं वो सत्य नहीं है। किस लिए बोलते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये सत्य नहीं है, यदि सत्य होता तो ऐसा नहीं होता जैसा हुआ है। तो बचा कौन है, राम नाम जो बचा है वो सत्य है ना, जो संसार का नाम रूप झूठा है, नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है, दोनों समाप्त हो गए आदमी के साथ में ही हो गए, ना रूप है ना नाम है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि हृदय राम मुख रामय होए, जिसके मुख में भी राम है, यानी राम का चिंतन करता है मुख से और हृदय में भी राम है। तो जिसके हृदय में और हृदय और मुख का मतलब है कि अंदर भी राम है और बाहर भी राम है। राम इसलिए अलग अलग आपको बताए जाते हैं, बताते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब होते न्यारा। इसलिए कहते हैं कि बहुत राम है, बहुत ज़्यादा राम मानते हैं कि नहीं। एक बाहर राम हुआ, एक अंदर राम हुआ, तो राम तो अलग अलग हो गए। एक राम जी महाराज हो गए, वो दशरथ के घर में पैदा होने वाले भी राम हैं, वो शरीर भी राम है और उस शरीर के अंदर भी राम है बाहर भी राम है, तो कितने राम मानेंगे, अलग अलग राम हो गए कि नहीं। हम दशरथ पुत्र जो शरीर में हैं उनको राम मानते हैं कि नहीं, वो राम हैं, वो राम तो केवल अयोध्या में रहते हैं, बाकी जगह कौन राम है, दूसरा राम मानना पड़ेगा। जब वो लंका में है तो अयोध्या में नहीं है, जब लंका में है तो अयोध्या में नहीं है, तो फिर उस राम को कैसे मानोगे। इसलिए कहते हैं कि राम की उपाधि करके भेद है, राम में भेद नहीं है, राम तो एक है। पूज्य हो राम एक ही देवा, पूज्य हो राम एक ही देवा, राम एक ही देव है, एक ही है, वो उसमें अंतर नहीं है। लेकिन कबीर राम कहन में भेद है, तामह एक विचार, कबीर जी महाराज कहेंगे आगे, कबीर रामे राम कहो कह बे माहे विवेक, कबीर रामे राम कहो लेकिन कह बे माहे विवेक, कहने में हमारे को विवेक चाहिए ना। एक अनेक है मिल गया, एक समाना एक, यहाँ पर निर्णय किया कबीर जी महाराज ने, एक अनेक है मिल गया, राम तो एक है अनेक है मिल गया, सब में पसरिया ब्रह्म पसारा, कबीर जी महाराज कहते हैं एक अनेक है मिल गया, एक ही है जो अनेक में मिला हुआ है। तो जो एक है ना वो अनेकता में भी एक है, अनेकता में अनेक नहीं हुआ, अनेकता तो उपाधियों की है, वो तो एक अनेक है मिल गया, एक ही अनेक में मिला हुआ है, एक समाना एक। जब ये समाप्त हो जाएगा फिर एक हो जाएगा, कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। कहीं राजा बना हुआ है, कहीं रंक बना हुआ है, कहीं गरीब है, कहीं अमीर है, कौन है? सब वही है। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। चौपाई में कहते हैं, चौपाई में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इतने में बताते हैं कि जब उद कर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, एको हम बहु श्याम प्रजा ये आ। इतना संकल्प करते ही कहते पूरा फैल गया। पीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। एक एको हम बहु श्याम, ऐसा संकल्प करते ही पूरा पसारा पसर गया। जब आकर्ष करत हो कब, जब आप आकर्षण करते हो, खींच लेते हो अपने संकल्प को, तो तुम मैं मिल देह धर सब हूँ। सारे जितने देह जितने आकार हैं आप में मिल जाते हैं। एक समाना एक, एक अनेक है मिल गया। कबीर राम कहन में भेद है, काम है एक विचार। सोई राम सबे कहे सोई कौतकहार, कबीर जी महाराज कहते हैं। वही कहते हैं कौतक कर रहा है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, वही राम है। कोई जैसा समय होता है, कभी नृसिंह बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राम बन जाता है। सोई राम सबे कहे सोई कौतकहार, कौतक भी लीला ही वही कर रहा है। लेकिन लीला करने के लिए जब हम देखते हैं तो लीला करता हुआ बनता नहीं है। वो आपको दिखाई पड़ता है कि ये जसुदा का पुत्र है नहीं किसी का पुत्र, क्योंकि उसका कोई नहीं है। उसका हमारे को दिखाई पड़ता है कि कौतक करता अलग हो गया, अलग नहीं हुआ। हमारे को शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं, शंकर भाष्य में गीता में कहते हैं कि वो जो कृष्ण है ना, कृष्ण कहते वो लगता है कि देवकी के नंदन से पैदा हुए हैं, लगता है, पैदा नहीं हुए, कहीं भी नहीं पैदा हुए। जब उनका कोई है ही नहीं, माता पिता उनका कहाँ से आएगा, जन्म ही नहीं, अजन्मा है, तो वो पैदा कैसे होगा। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, हे पंडित जी कहो कबीर, जानेगा सोए हृदय राम, मुख रामे होए। जिसके हृदय में भी राम है, मुख में भी राम है, वो ही जानता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।